कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद श्रीमद भक्ति प्रज्ञान के सो गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात त्रिदंडी पादगण ब्रह्मचारीगण अनन्य वैष्णव वैष्णवीगण, भगवान के कृपा से चार दिन हरि कथा यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से हुई। नगर के विभिन्न घरों में भी हरि कथा हुई, सब लोगों ने आदरपूर्वक सुना। आज पंचम दिवस अंतिम दिवस है। कृष्ण की लीला कथा श्रवण करने से ही सब कुछ हो जाता है, भव सागर को पार हो जाता है। यहाँ तक कि भगवान की लीला कथाएं को सुनना ही भव सागर से पार होना है और कृष्ण का प्रेम पाने, कृष्ण को प्रेम की प्राप्ति करा देती है। इस कथा से जो विमुख होगा वो आत्मघाती होगा, सेल्फ किलर होगा, और विशेष करके मुक्त महापुरुषों के द्वारा यदि कथा कही जाती है तो उसका प्रभाव एक निराला ही होता है। अब इंद्र को दमन करने के बाद में कृष्ण ने यज्ञ पत्नियों की इच्छा पूर्ण की। कृष्ण को भूख लगी थी गोचारण के समय, सखाओं से कहा जे जाओ भिक्षा मांग करके लाओ, ब्राह्मण कण कहीं तपस्या यज्ञ कर रहे हैं उनसे मांग लाओ कुछ। उन लोगों ने नहीं दिया तो वो खींच गए, उन्होंने कहा जे उनकी पत्नियों से मांग लाओ, जाओ भिक्षा में कहीं अनादर भी होता है कहीं आदर भी होता है, तुम इसके लिए मत घबराओ। गए उनकी पत्नियों से कहा और वो सुनते ही थाल में भर भर कर पकवान सब लेकर के चल पड़ी। और जिन जगह पत्नियों को उनके पतियों ने घर में बंद कर दिया वो तो पहले ही शरीर छोड़ करके कृष्ण से मिल गई, बाकी जो रही सब थाल में भर भर कृष्ण के पास में आई और कृष्ण का अद्भुत रूप सौंदर्य देखा। बोली अब हम घर नहीं जाएंगे, हमारे पति नहीं ग्रहण करेंगे, भाई माता पिता भी ग्रहण नहीं करेंगे, और जाकर के करेंगी भी क्या। कृष्ण ने उनको समझाया आप लोग ब्राह्मणों की पत्नियां हैं इसलिए मैं इस रूप में ग्रहण नहीं कर सकता, अगले जन्म में तुम गोपी होकर के आना मेरे आशीर्वाद से और उस समय तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। कह सुन करके और उनको लौटा दिया। उनके पतियों ने देखा कि हम ब्राह्मण होकर के सारे वेदों को जानने वाले सब यज्ञों को करते हैं, उपनयन संस्कार भी हो गया और हम भगवान निकट आए और उनका दर्शन ही किया, भोजन मंगा तो नहीं दिया, और ये सब समय अपवित्र रहने वाली वेद भी नहीं पढ़ती है, वेद में भी अधिकार नहीं, और इन्होंने भगवान को दर्शन किया खिलाया पिलाया और संतुष्ट कर दिया, बस उनके चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगे, मुझे धिक्कार है जी हम लोग नहीं। इस तरह से यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। कुछ लड़कियां कात्यायनी व्रत कर रही थी गोपियां, एक दिन नंगी होकर के स्नान कर रही थी, अंतिम दिन कृष्ण आए सखाओं के साथ में कुछ और उनके वस्त्र लेकर के ऊपर चढ़ गए और टिठोली करने लगे, ओ तुम नंगी हो करके आ करके हमें प्रणाम करेगी तब उन्होंने कहा जी हम ही कंस से जाकर कहेंगे, नंद बाबा यशोदा से नालिश करेंगे, किंतु कृष्ण हंसने लगे कंस हमारा क्या कर लेगा। अंत में गोपियों ने कृष्ण के इच्छा अनुसार जल से निकल करके उनको प्रणाम किया और कृष्ण ने कहा तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण हों। अगले कार्तिक महीने में शरद पूर्णिमा में तुम्हारी इच्छाओं को हम पूर्ण करेंगे। वे खुश होकर के अपने अपने घरों में लौट और अगले वर्ष जब कार्तिक आरंभ होता है तो उस समय में पहले दिन पूर्णिमा होती है, उस दिन कृष्ण ने बंसी बजाई और जो गोपियां जहां थीं वहीं से घर के सबके काम काजों को छोड़कर कृष्ण के तरफ में दौड़ पड़ी। एक दूसरे से बतलाया नहीं और वे कोई घर लिप रही थी छोड़ दिया, कोई रोटी पका रही थी बस अध जले छोड़ दिया तवे पर ही, कोई घर में दालिया बना रही थी उसको उसी स्थिति में छोड़ दिया, कोई पति की सेवा कर रही थी उनके लिए गर्म जल बना करके स्नान करने के लिए दे वो भी छोड़ दिया, कोई अपनी ननद की या दूसरों की लड़के को दूध पिला रही थी वो भी छोड़ दिया, सब कुछ, कोई अंजन लगा रही थी एक आंख में अंजन लगाया दूसरे में नया उसी को छोड़ दी, कोई गहने पहन रही थी तो पैर का पैजेब गले में और हार को पैर में पहन लिया चल पड़ी। जैसे उनमें से किसी पतियों ने उनको रोका, उन्होंने क्या किया वो सबसे पहले कृष्ण के पास में पहुंच गई। कैसे पहुंच गई? और गोपियां जो सिद्धा गोपियां थी वो पहले पहुंच गई और पीछे से ये लोग भी पहुंची। कृष्ण ने समझाया अपने घरों में लौट जाओ, पतियों की सेवा करना परम धर्म है, पति लंगड़ा लूला कोढ़ी निर्धन गरीब जैसा भी हो स्त्रियों को अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए, तुमको धर्म उल्लंघन का पाप लगेगा इसलिए लौट जाओ। गोपियों ने कहा वाह इतनी अच्छी शिक्षा देने वाले आप जैसे गुरु कहाँ मिलेंगे, तो ठीक है आपकी बात तो मानते हैं घरों में लौट जाएंगी किंतु पहले गुरु की सेवा तो कर ले, किसी काम में गुरु का ही अर्चन पहले होता है पूजा। हम पहले आपकी सेवा कर ले इसके बाद में हम घर जाएंगे, और दूसरी बात हम जाएंगे कहाँ, घर को तो छोड़ा ही है पति को छोड़ा ही है, आर्य धर्म का उल्लंघन कर चुकी हैं, अब कहीं संसार में हमारा स्थान नहीं है। इस प्रकार से यदि दोष है हमारे आने का और धर्म उल्लंघन तो आप ही इसके कारण है। कृष्ण निरुत्तर हो गए, अंत में उनके साथ निराश किया, इसका बहुत लंबा वर्णन है। उसमें राधिका जी मानकर करके चली गई, कृष्ण भी रास में सब गोपियों को छोड़ करके चले गए। यह रासलीला काम पर कृष्ण की विजय है, जैसे इंद्र को दर्प चूर्ण किया, जम जी को जाकर के दर्शन दिया उन्होंने उनकी वंदना की, शंकर और ब्रह्मा जी को तो जानते ही हैं, इसलिए कामदेव ने सबको परास्त कर दिया किंतु कृष्ण ने काम को पराजय करने की ये लीला है। और दूसरी बात राधा की सर्वश्रेष्ठता दिखलाने के लिए है, सब जितनी गोपियां हैं उन गोपियों में राधा जी यदि नहीं रही तो रास किस लिए, इसलिए सब गोपियों को छोड़ करके रास स्थान से चले गए। इसके बाद में गोपियां हाय हाय करने लगी, कृष्ण राधा जी को लेकर गए उनको भी छोड़ दिया, फिर सब आकर के जमुना के पुलिन में कीर्तन करने लगी, रो रही है कि कीर्तन कर रही हैं कुछ मालूम नहीं हुआ। इसके बाद में कृष्ण प्रसन्न होकर के दर्शन दिए, गोपियां उनसे ताना मारने लगी, हम आपके लिए सब कुछ छोड़ करके आई और आप हमें छोड़ करके चले गए। कृष्ण ने कहा न पारे हम निर्वध्य संज जाए। तुम्हारा प्रेम हमारे प्रति निर्मल है, मैं देता हूं जैसी लंबी आयु पा करके भी तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता कदापि, यदि तुम अपने सत स्वभाव से साधु स्वभाव से हमें मुक्त भी कर दो, किंतु मैं तो तुम्हारा चिर ऋण ही रहूंगा। इस प्रकार से रासलीला समाप्त हुई। नारद जी कृष्ण से मिले, बोले जी महाराज आप तो ब्रज की लीलाओं में ही मग्न हो गए, आपको पता है आपके माता पिता को हथकड़ी में बंद करके और कितना कष्ट कंस देता है, अत्याचार रहा कर रहा है, उनको पैरों से ठुकराता है, अपमान करता है, आपको वहां पर भी तो जाना है, उनको छुड़ाना है, और इसके बाद में आपको जरासंध इत्यादि दानवों को मारना है, फिर द्वारका में जाना है, 16,108 रानियों से शादी करनी है, महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह द्रोण कर्ण अश्वत्थामा इत्यादि सब आतताई लोग हैं, धर्म अधर्म कर रहे हैं, उनको भी मारना होगा, आप भूल गए? ओ ठीक है। और इधर में नारद जी यहां से कह करके कंस के पास में गए, अरे देखो ये सब विष्णु हैं, विष्णु के दल वाले हैं, तुम्हारे मारने की तैयारी हो रही है, इन पर दया मत करो, और वो घोर अत्याचार और करने लगा। नारद जी ने इसलिए कहा जी जितना ही जल्दी अत्याचार करेगा भगवान जल्दी आए। इस तरह से कंस दिन रात उन्हीं की चिंता करता था। अक्रूर को बुला करके कहा, अक्रूर ताऊ जी आप हमें बड़े शुभ चिंतक हैं, आप जल्दी ब्रज में जाइए और वहां से कृष्ण को और बलदेव को किसी प्रकार से समझा बुझा करके लाइए, यहाँ पर अंगेश्वर के लिए पूजा होगी शंकर की, और उस पूजा में दंगल होगा, उसमें बड़े बड़े पहलवान आएंगे, वो अपनी अपनी कला दिखलाएंगे, उसमें कृष्ण भी आए, उनके पिता माता को भी निमंत्रण करना, वो भी हमारा कर दे करके जाएंगे। अक्रूर ने कहा जे ये भगवान की इच्छा है, जब मृत्यु निकट आती है तो कोई व्यक्ति नाग को सर्प को अपने गले में लगा लेता है, ये नहीं जानता है कि डसेगा। कंस ने देखा जी हम जितने असुरों को भेजा ब्रज में, कोई लौट करके संवाद नहीं देने के लिए आए, ये क्या हुआ, पुतना को भेजा, अघासुर को, बकासुर को, अरिष्टासुर को, और किसने को इसको भेजा, कोई भी लौट करके नहीं आया, इसलिए ब्रज में उसको मारना कठिन है, इसलिए अपने किले में ले आए, और यहाँ पर चारुण मुष्टिक इत्यादि बड़े बड़े वीर हैं, हम लोग हैं, सभी लोग मिल करके उसे मारेंगे। अक्रूर चाचा जी आप जल्दी से जाइए। अक्रूर ने अच्छा तुम सर्प को अपने आप गले में लगा रहे हो, बुला रहे हो। अक्रूर जी ने कहा सोचा जी ये भगवान का इसी विषय से दर्शन हो जाएगा, अपने को धन्य भाग मनाते हुए नंदगांव में गए और वहां पर कृष्ण और बलराम से कहा, फिर नंद बाबा जसोदा से कहा, और फिर समस्त ब्रजवासियों के जितने जो नंद बाबा उनके सखा था सखा थे उनको सबको निमंत्रण किया, वे लोग भी अक्रूर के साथ में आए और कृष्ण बलदेव को ले आए। उसमें गोपियां पागल हो गई कृष्ण के लिए, रोने लगी, बिलाप करने लगी, कृष्ण ने किसी प्रकार से समझाया आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जरूर आऊंगा कंस को मार करके, इसलिए गोपियों ने किसी प्रकार से धैर्य धारण किया। इसके बाद में कृष्ण आए और धनुष यज्ञ हो रहा था शंकर जी के निकट, वहां पर कंस ने मतवाला हाथी रखा था, क्या नाम, कुबल्यापी, और कृष्ण ने प्रवेश करके और कुबल्यापी मद पी करके और कृष्ण को मारने के लिए झपटा। कृष्ण ने बलदेव ने एक पूंछ और एक सूंड पकड़ करके उसे इधर उधर करते गिरा करके उसके दांत उखाड़ के उसी से मारा, महावत को भी मारा, रक्षकों को भी मारा, और वीर की तरफ में वो दांतों को अपने कंधों पर लेकर के खून के छींटे लगे हुए आगे बढ़े, धनुष को उठाया उसे तोड़ दिया पहले दिन, और फिर रंगशाला में प्रवेश किया। रंगशाला माने जहां पर कि अखाड़ा होता है लड़, वहां पर चारुण मुष्टिक सल तोसल इत्यादि बड़े बड़े पहलवान जिनका वज्र के समान शरीर था, कृष्ण को और बलदेव को हाथ पकड़ करके खींच लिया अखाड़े में। तुम तो बड़े वीर हो, पुतना को अघासुर बकासुर को मारने वाले साधारण नहीं हो, इसलिए आज हम दंगल करके महाराज कंस को रिझाएंगे, प्रसन्न करेंगे। कृष्ण ने कहा हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं। यानी छोटे छोटे बच्चे नहीं है, तुम लोग जंगल में खेल कूद में बड़े बड़े कसरत करके व्यायाम करते हो, तुमने यदि पीर नहीं होता तुम लोगों को कैसे मारा। अभी अभी कुबल्या पीड़ हाथी को भी मार डाला सुना, और जबरदस्ती पकड़ करके खींचा। कृष्ण वीररस को आस्वादन करने लगे, और बलदेव जी जब लड़ते लड़ते जब चारुण ने कृष्ण को एक मुक्का मारा मारने के उद्देश्य से, जान से मारने के लिए, कृष्ण ने उसे सह लिया और इसके बाद में उसको उठाकर पकड़ लिया और आकाश में घुमाते हुए उसे फेंक दिया, वो मर गया। बलदेव जी ने इसी प्रकाश मुष्टि को तल सोसल सब वीरों को मारा। इसके बाद में कंस के भाई लोग आए उनको भी मारा, और कृष्ण सिंह की तरफ में उछल करके ऊपर में कंस बैठा था बस उसकी चोटी पकड़ करके और गिरा दिया, लड़ने का समय भी नहीं दिया, और उसकी छाती पर ब्रह्मांड का भार लेकर के कूद पड़े, वो वहीं पर समाप्त हो गया। अब तो कंस की स्त्रियां आकर के रोने लगी और सब लोग लो रहे, हाय हाय क्या हो गया। कृष्ण ने उनका संस्कार कराया, फिर किस प्रकार से नंद बाबा जसोद नंद बाबा से कृष्ण मिले, नंद बाबा रो रहे थे, उनको साहस दे करके सांत्वना दे करके बलदेव और कृष्ण को कुछ दिन के लिए छोड़ करके ब्रज में लौटे, और इनको गुरु गृह में संदीपनी मुनि के यहाँ बहुत दो कृष्ण और बलदेव को भेज दिया। वहां उनका मुंडन हुआ, वहां पर जाकर के गुरुकुल में कितने दिन 64 दिन रहे, और 64 दिन में 64 कलाएं सब वेद उपनिषद शास्त्र पुराण सब पारंगत हुए, धनुर्वेद और जितने प्रकार के मंत्र तंत्र सब में ये नित्य कला में संगीत कला में निपुण हो गए 64 दिन में। और गुरु को अपने पुत्र गुरु का पुत्र मर गया था, उसको गुरुवाइन ने कहा कि हमारे पुत्र को ला दो, कृष्ण जम से पुरी से जाकर के उनके पुत्रों को लेकर के दे दिया। इस प्रकार से कृष्ण लौट करके और फिर गुरुकुल से फिर मथुरा में आए। उस समय एक दिन अटारी पर चढ़ करके उत्तर की तरफ में वृंदावन की तरफ रहे, और उनको ब्रज की याद आई। कैसी याद आई, अब तीर्थ महाराज जी इसका विवरण आप लोगों को सुनाएंगे। अब ये लीला अब तक तो ब्रज की थी, अब इसको माथुर लीला कहते हैं। कृष्ण मथुरा चले गए, वहां से क्या क्या लीलाएं की हैं इसका वर्णन करेंगे। बोलो तुम इसके बाद में माथुर लीला कैसी।
कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अभी अभी गुरु जी ने ब्रज लीला का वर्णन करते हुए आप हम सभी को सुनाया। भगवान ने ब्रज की लीलाएं की, प्रेम रस का आस्वादन किया, साथ ही गोपियों के तिरंग विप्रलंब में कितना भाव उदय होता है, उस भाव चमत्कारिता का आस्वादन उसको जगत में प्रकाशित कर जिसे देखकर लोग चमत्कृत हो जाए और सभी उनका अनुगत स्वीकार करें, उन भावों को प्राप्ति करें। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो कि ब्रज लीला के पश्चात मथुरा में गए और मथुरा में जा करके जो कि आपने श्रवण किया है, जब गुरु शांतिपनि के वहां से लौट के आए, एक दिन छत के ऊपर चढ़ते हुए देखा कि सामने जमुना बहती हुई जा रही है। यमुना की कलकल धारा को देखते हुए कृष्ण के मन में ब्रज की सारी स्मृति उमड़ आई। उस समय वे अपने को धैर्य नहीं रख सके, बड़े विरह में व्याकुल होकर रोते रहे। ऐसे समय में उनके परम मित्र जो कि कृष्ण नाम प्रवर मंत्री कृष्णस्त दैत सखा बुद्धे व्यस्तते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम, वह उद्धव जी जो कृष्ण के परम मित्र हैं मथुरा और बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हैं, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, वृष्णि वंशियों के प्रवर श्रेष्ठ हैं और जदुवंशियों के मंत्री हैं। इस प्रकार उद्धव जी जिनको देख करके सभी आनंदित हों, देखने में कृष्ण जैसे परंतु कृष्ण नहीं, ऐसे उद्धव को उन्होंने अपना सखा बनाया और वे उद्धव जी कृष्ण के साथ हमेशा रहा करते। जब आकर के देखा कि कृष्ण बड़े व्याकुल होकर रो रहे हैं, देख के देवी आश्चर्यचकित हो गए कि क्या बात है। उस समय कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ करके कहा कि प्यारे उद्धव भैया, गच्छोद्धव ब्रजम सोम पित्रयाम प्रतिमा बह, हे सोम हे उद्धव, तुम ब्रज में एक बार के लिए जाओ, मेरे पिता माता को वहां सांत्वना देंगे और मेरी प्राण वल्लभा मदात्मिका ब्रज गोपिया जो मेरे बीच में केवल प्राण धारण करके रह रही, मैं आऊंगा आयास्ती दौत के, मैं आऊंगा वचन दे करके आया, इसी वचन पर विश्वास प्राण धारयंती कथंचन, कैसे भी किसी भी प्रकार से बड़ी कष्ट से प्राण धारण कर, नहीं तो वे सब कभी शरीर छोड़कर चली जाए। ऐसी जो गोपियां हैं मेरे बीच में खोई हुई, मैं समझता हूं उन लोगों ने अन्न जल सभी कुछ त्याग किया, खाना पीना भी छोड़ दिया, इसलिए मत संदेह सही विमोह कर, मेरे कुछ संदेश वचनों के द्वारा उनको धैर्य बना रखे और वहां पर तुम जाओ। कृष्ण ने उद्धव को क्यों भेजा? कृष्ण गोपियों के विरह में ब्रजवासियों के विरह में व्याकुल है, विरह में अधीर है, उनका हृदय फटता है पर मुंह नहीं फटता, मुंह नहीं खुलता। क्यों? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके सामने उन ब्रजवासियों के दुख दर्द की बात सुनाए, किसी को भी कुछ नहीं कह सकता। मथुरा भूमि जो है ऐश्वर्य की भूमि है, यद्यपि ब्रज की राजधानी ब्रजमंडल में मथुरा है, फिर भी मथुरा ऐश्वर्य की भूमि होने से सभी ऐश्वर्य भाव में डूबे थे। ब्रजभूमि माधुर्य की भूमि है, उस माधुर्य की भूमि और ऐश्वर्य भूमि में बहुत अंतर हो जाता है, भावनाओं का भी दिन रात का अंतर है। कृष्ण किसी भी प्रकार से किसी के सामने कोई बात नहीं कर पाए। यह उद्धव जी यदि ब्रज में जाए और वहां जाकर के गोपियों की पाठशाला में कुछ प्रेम का पाठ सीख करके आए तब इसके सामने कुछ कहूं तो वे समझे। इसलिए कृष्ण ने उनसे सिखाने को ब्रज में भेजा। यथार्थ कोई ज्ञान का संदेश देकर के गोपियों को धैर्य बुलाना उद्धव के द्वारा संभव नहीं था। फिर भी उद्धव के मन में तो ऐसा विचार था कि ब्रज की गोपियां ब्रजवासी जितने भी हैं सब गांव के हैं और ये घोष लोग हैं जादव हैं, तो इनको समझाने में क्या लगता है। दो चार बातों में अपने ज्ञान की परिपाटी में उनको समझा दूंगा भुला दूंगा, वे कृष्ण को भूल जाएंगे और धैर्य बना लो। इस प्रकार उद्धव के मन में कुछ भावनाएं तो रही। इसलिए ज्ञान की गठरी लेकर के ब्रज में जा रहे हैं। जबकि कृष्ण बलराम जिस रथ में बैठ करके आए थे वह कंस का रथ था, सोने का बनाया हुआ, बड़ा ही कीमती वाला। तो उसी रथ में ही उद्धव को बैठा दिए, देखने में कृष्ण जैसे। फिर भी उनको पीतांबर पहना दिए, गले में माला लगा दी। इस प्रकार कृष्ण ने उनको भेजा। कोई संदेशा बार बार कहते हैं कि गोपियों को इन वचनों से सुना, ऐसे ऐसे करते हुए उनको भेजा। जब वे ब्रज में गए तो जमुना जी हंसती रही और वृंदावन की झाड़ियों में उनकी ज्ञान की गठरी खुलती जा रही है। पहले तो उन्होंने कुछ ब्रज लीला में जैसे सभी आनंदमय सभी खुशहाली में ये सब देखते चले, परंतु जेम ज्यों नंद गांव की ओर आगे बढ़ने लगे त्यों त्यों उनको कृष्ण विरह की सारी स्थितियां दिखाई देने लगी। उस समय सभी विरह उन्माद में खोए हुए डूबे थे। जब नंद भवन के पास में पहुंचे, सड़क पर आए, कुछ लोग वहां आए, देखा कि ये सोने का रथ जरूर कोई मथुरा से आया होगा। निकट में आकर के देखा कि ये उद्धव जी आए, उसे लेकर के नंद बाबा के पास में गए, उनसे मिलाया। उद्धव जी ने प्रणाम की, नंद बाबा ने गले लगाया, आंखों के आंसू बहाते रहे। इसके पश्चात किसी ब्रजवासी से कहा, हम लोग बिना खाए पिए कृष्ण के लिए जैसे भी हो हम रह रहे हैं। उद्धव बहुत दूर से आया है मथुरा, तो उसे दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, इसलिए उसके लिए कुछ भोजन बना के लाए। तब तक ब्रज में सभी कृष्ण के विरह में अभी किसी के घर में कोई भोजन पानी नहीं बनता। जब से कृष्ण गए तब से नंद बाबा यशोदा मैया दीवारास्त रोते रहे। यशोदा मैया तो मुंह के ऊपर कपड़ा ढक ली, कृष्ण के बिना मैं और कुछ भी नहीं देखूंगी, दीवारास्त रोती रहे। माताएं आकर के सांत्वना देती हैं, परंतु कहां भेद्य बनता। नंद बाबा भी एक योगी की भांति बैठे हुए दीवारात्र रोते हुए अंध जैसे बन गए। व्रत की गौए जितने हैं कृष्ण के विरह में अधीर होकर घास खाना और गोचारण में वन में जाना वो भी छोड़ दिया, बछड़े भी दूध भी नहीं पिया करते। इसी प्रकार कोयल अब कुहू कुहू आवाज नहीं करती, मोर मोरनी के का ध्वनि से पेखम उठाकर अब नाचते भी नहीं, भौरे फूलों में बैठकर मधुपान भी नहीं करती। इस प्रकार सभी कृष्ण के विरह में अधीर। उधर जितने भी सखा लोग हैं सुबल सुदाम मधुमंगल आदि कृष्ण के विरह में अधीर होकर कहीं किसी वन में एकांत में खड़े हुए दीवारा रो रहे हैं। प्रति गोपियां जब कृष्ण ब्रज से गए उस समय वे उद्धव के अरिवान जहां गोपियां कृष्ण के रात को घेर ली थी उसने सांत्वना दी और रात को आगे बढ़ाकर चले गए। गोपियां उनके पीछे पीछे करते हुए कुंतल गई जब तक रथ का निशानी दिखता रहा उसी वन में पड़ी रही। तब से राधा जी तो मूर्छित होकर के पड़ी थी। गोपियां वहां कृष्ण के विरह में अधीन होकर के तब से प्रतीक्षा कर रही। किसी ने अन्न जल तक ग्रहण नहीं किया। नंद बाबा ने जो कि नंद भवन में चूल्हे में मछली का जाल हो गया।
एक मिनट, ओ कृष्णदास मन रो लागे ना। सभी बोलो आगे बढ़ो।
नंद बाबा अब उधर से बैठ कर कुछ बात कर रहे, पर कुछ बोल नहीं पा रहे। ये वही बोलने को जाते हैं तो उतना ही बेशक कर रोने लगते। कृष्ण का स्मरण करते ही उनका गला भर जाता है। उस समय नंद बाबा इसी प्रकार से अपने को रोकते थे। उद्धव से पूछा कि उद्धव यह बता, अब तो देवकी वसुदेव उछलते हैं मथुरापुरी में, अब तो कोई कष्ट नहीं, दैव से वह कौन सा मारा गया, मथुरापुरी का सब समस्या का फल हुआ है, क्या हमारे कृष्ण बलराम उछलते हैं, वे क्या कर रहे हैं, कब आएंगे। इतना कहते थे वे अतिशय धैर्य के खो गए। उस समय नंद बाबा बड़े विकल्प होकर के रोते रहे। उद्धव जी अब उनके इस प्रकार भाव ऐसे रोते हुए देख वे क्या कहेंगे, उनके कुछ मस्तिष्क में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं रहा, जो कुछ भी सोचते हैं कुछ भी बोलने का। उस समय बहुत देर पश्चात उद्धव ने नंद बाबा को सांत्वना देने के लिए कुछ कहने लगे कि बाबा आप तो बड़े सौभाग्य वाले, कृष्ण आपसे कहीं दूर नहीं, वे सदैव आपके हृदय में, क्योंकि वे कोई साधारण तो बालक तो नहीं है, आपका पुत्र है, परंतु वे परब्रह्म परमेश्वर स्वयं भगवान है, वे आपके हृदय में सर्वदा अवस्थान करते, कहीं आपसे दूर नहीं, ऐसा जानकर आप अपने को धन्य। उस समय नंद बाबा बोले कि उद्धव ये क्या तुम बोलते हो, मैंने तो सोचा कि कृष्ण मेरा पुत्र है, मैं अपना पुत्र समझा, कभी तो उसको मैंने परमेश्वर या भगवान परब्रह्म ये तो नहीं समझा, और तुम कहते हो वह परमेश्वर है, आज उन्हें पा करके मैं खो बैठा, तो मेरे जैसे 2000 और कौन हो, आज वे मुझसे बहुत दूर चले, आज कैसे मैं जीऊं, कैसे उनको भूलूं, ये संभव नहीं। इस प्रकार नंद बाबा बहुत से प्रसन्न थे, पिता है तो एकमात्र दशरथ महाराज जी पिता है, जिन्होंने एक बार हा राम कहा तो उनका प्राण पखेर उड़ गया, परंतु आज तक मेरा प्राण पखेर तो उड़ा नहीं, कृष्ण कहते हैं अभी भी मैं जी रहा, परंतु यह प्रेम की रीति है कि प्राण छोड़ना तो अति सहज बात है, पर प्राण धारण करना बड़ा कठिन है। जब नंद बाबा का औलाद वात्सल्य प्रेम इस प्रकार विरह में बैकुंठ होकर नंद बाबा कहने लगे, जब कृष्ण कन्हैया को भूख लगता है एक मिनट का भी देर सहन नहीं होता तो घर के बर्तन सारे तोड़ डालते, यशोदा के गोदी में जब तक बैठकर दूध नहीं पिया तब तक उसको शांत, मेरे गोदी में बैठकर मेरे चबाए हुए पान को निकाल करके जब तक नहीं खा लेता तब तक उसको चैन का, परंतु आज अपने उस बात उस पुत्र को उस बालक को हमने खो बैठा, वे दूध चले। आज घर की हर एक चीज, एक वस्तु, हर एक वस्तु कृष्ण की याद करती। मैं कैसे भूलूं, दो एक मिनट के लिए भी उसको भूल नहीं पाता। बच्चा ऐसा कोई स्थान नहीं जिस स्थान में कृष्ण ने खेला नहीं। हर एक पेड़ के नीचे बैठे जमुना पुलिन गिरिराज और जितने भी पहाड़ पर्वत वन वनभूमि हैं, सर्वत्र भ्रमण की, सर्वत्र उनकी लीलाओं की स्मृति बनी थी। इस प्रकार नंद बाबा कृष्ण की बचपन से लेकर सभी लीलाओं का वर्णन करते हुए कहा कि कितनी कितनी भारी भारी विपत्तियां आई, उसमें उन विपत्तियों में नारायण ने हमारे बालक की रक्षा की, कृष्ण की रक्षा की। और उन विपत्तियों से हम बचे। परंतु गर्गाचार्य ने कहा था नारायण स्वभाव गुणे, गुणों में नारायण की दृष्टि, और इससे ही समस्त विपत्तियों से मुक्त हो। ब्रज में जितनी जितनी विपत्तियां आई ये सब सारे विपत्तियों से हम बचे और हम सबकी रक्षा। परंतु आज उनके इस विरह रूपी विपत्ति से हम कैसे निकले, इस विरह समुद्र से निकलने का कोई पार। इस प्रकार रात भर कृष्ण की बातें करते हैं, उद्धव को सुनाने लगे। सारी रात बीती। उद्धव जी प्रातः काल नंद बाबा यशोदा माँ को प्रणाम करते हुए अंततः कुछ भी तो बोल नहीं सके, केवल सुनते ही रहे। प्रणाम करके बाहर निकले, कृष्ण कुंड में जाके स्नान किया, गायत्री जप करते हुए अब रात लेकर के रात में बैठ कर चले। कृष्ण ने कहा था गोपियों के पास जाने से, इसलिए उस क्यारे वन में पहुंचे जहां गोपियां। जैसे ही रात लेकर के पहुंचे, कुछ गोपियां वहां सामने आई, बोले कि अरे ये कौन आया, फिर से वही सोने का रथ लगता है, वही काल क्रूर अक्रूर जो पहले भूमि को अंधेरे में डालकर चला गया, तो वही आया है। अब किस लिए आया, निश्चित रूप में जान करता है गोपियों के हित पिंड को लेने के लिए आया। कंस के मरने के पश्चात मथुरापुरी में पिंड देने के लिए कुछ नहीं मिला, तो इसलिए यहां आया है गोपियों का हित पिंड लेने। ऐसे ताना बाना पीड़ित उद्धव जी चमत्कृत हो गए। ऐसी प्रेम की परिपाटी, ऐसा शब्द, ऐसी भाषा कभी तो सुना ही नहीं। और गोपियां सामने आई, निश्चित रूप में यह कृष्ण का कोई संदेश वाहक। तब उनसे कहने लगी, यहां तुम कैसे आए, यह रास्ता नहीं है, रास्ता भूल करके आ गए। तुम्हें कृष्ण के पिता माता के पास में जाना चाहिए, उनको सांत्वना दो, तुम्हें देख करके वे प्रसन्न होंगे। यहां तो उनका कोई भी संबंध संपर्क नहीं रहा, उन्हें धन्यवाद है जिन्होंने क्षण भर में ही सारा संपर्क संबंध तोड़ लिया है। कि मुनि अति सुदुष्ट जन, जैसी मुनियों के लिए भी जो दुष्टज है जो भूल नहीं सकती। परंतु उस कृष्ण को धन्यवाद जो कि हम सबको भूल गए, हमें छोड़ दिया। संसार में प्रेम होता है परंतु कोई मतलब लेकर, स्वार्थ लेकर के प्रेम होता है। इसलिए कोई स्वार्थी जैसे कि जिसके पास धन हो उसे देखते हुए सभी लोग उसके नेत्र बन जाए। जब तक रूप यौवन हो तब तक पति पत्नी का बड़ा संबंध है। जब कोई बीमार पड़ जाए, शरीर से विकृत हो जाए और कोई संबंध नहीं। बार बनीता भी जब तक पुरुष से पैसा मिलता है तब तक उसकी सेवा करती, फूलों में भावे बैठते। एक बार मधुपान करने के पश्चात दोबारा कभी लौट के नहीं आता। जंगल में हिरण रहता है पर आग लगने पर फिर कभी लौट के नहीं आएगा। वृक्ष में पक्षी बैठते हैं जब तक फल फूल है, नहीं तो फूल नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति है संसार में स्वार्थ का प्रेम। परंतु हम लोगों ने बचपन से कृष्ण से संबंध जोड़े हुए, कृष्ण से प्रति व्यवहार, उसमें तो कोई लेन देन नहीं। कभी हमने कोई कपड़ा या रोटी हमने तो कुछ मांगा नहीं, कृष्ण से हमने कभी कुछ मांगा नहीं, ना कुछ दिया। जो कुछ बना खुदा सर्वस्व दे करके उनकी सेवा। परंतु आज हमारा कौन सा ऐसा कुछ जो कृष्ण ने हमें छोड़ दिया, उद्धव तुम कह सकते हो हमारी क्या कमी देखी उन्होंने जब उन्होंने हमें छोड़ दिया। ऐसा कहते हुए गोपियां उस समय बड़े जोर जोर से रोने लगे। विकल होकर रोती हुई कृष्ण के कोई शोर और बल की लीलाओं का गान करने लगी और रोती लगी। इस प्रकार कुछ देर तक रोती हुई कहती हुई अपने को धैर्य बनाती हुई बोली कि चलो एक बार राधा जी की दशा तो देखा दो, एक बार देखते लो जैसे तुम आए हो। देखे राधा जी के पास चले जहां फूलों के सेठ में सुला था और लेटी हुई है फूलों के समान, उनका शरीर छीण बन करके बराबर हो गया। गोपियां रुई लगा सकती श्वास देखती है कि श्वास चल रहा है या नहीं। कभी घंटे आधा घंटे में कोई एक शब्द बोल दे। इस प्रकार रुई चले उड़ने लगे, कुछ चले तो पता चले कि हाँ श्वास चल रहा है। कभी कभी पल्स भी नहीं मिल पाता। तो ये स्थिति दिव्य उन्माद की स्थिति में पड़ी हुई कृष्ण के विरह में उन्माद, जो कि रूढ़ अधिरूढ़ और उससे ऊपर दिव्य उन्माद जो अंतर दशा में खोई हुई थी। ऐसी दशा में कोई एक काला भ्रमर आ करके राधा जी के चरणों में बैठने को जाता है और उसके गुनगुन ध्वनि को सुनकर राधा जी अंतर मन में सोचती है कि कोई काला भ्रमर आया और उसी के साथ बात करने लगी। तब उस दिव्य उन्माद में जो प्रलापमय वचन कहती है, जो दूसरों के और भाषा से अति ऊपर है, जो बोधगम्य नहीं हो सकता, फिर भी भागवत जी में श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया। जब राधा जी के विरह विलाप को मधुपकितम वंदो मां प्रसामने सपत्ना कुछ विलित माला कुंकुम सत्वीर्ण वह तू मधुपति मानिनी नाम तत्प्रसादम यद सरस विरंगम यस दूतस्तमित्री। अरे मधु भ्रमर तुम क्यों आया, लगता है कृष्ण का संदेश वाहक दूत बन करके आया। जैसे राजा वैसे राजदूत, तो यहां ऐसे मनाने के लिए मुझे मनाने के लिए आया क्या? एक माननी को ऐसे ही बनाया जाता है? तुम्हें तनिक भी शुद्ध बुद्ध नहीं है, कोई ज्ञान विद्या बुद्धि नहीं है। क्यों तुम्हारा छह पैर है, मनुष्यों का दो पैर होता है तो बुद्धिमान थी, पशुओं का चार पैर होता है इसलिए उसे जानवर कहा जाता है, पशु कहा जाता है। और तुम्हारे छह पैर है जो कि तुम उस जानवरों से पशुओं से गया बिता, बुद्धि तो है नहीं, कैसे आना चाहिए। तो आया तो इस गोफों में मूत में ये कुमकुम लगा के क्यों आया, ये लाल वर्ण लाल रंग लगा करके क्यों आया, कुमकुम लगा ऐसे ही बनाया जाता है, भद्रवेश बना के आता। तो तुम्हारी प्रभु की जैसी जैसे सभा में हंसी होती है वैसे आज तुम्हारी स्थिति, तुम्हें देख करके पता लगता है तुम्हारे प्रभु भी कैसे। तो यहां बार बार तुम क्यों हमें मना रहे, क्यों उनकी बातें कहती कहते हो, उनकी बातें हमने बहुत सुन ली, ये सारी पुरानी हो गई है, धन्यता अन्न वार्ता और कोई नई बात हो तो कुछ बताओ, वो भी नहीं वही पुरानी बात है, ये तो हमने सुन सुन करके कान भर लिया। हम ब्रज नारी ब्रज गोपी थी, हम वो भोरी भारी लक्ष्मी नहीं जो सीधी साधी भरी भारी है, बार बार थकती है रोती है फिर भी कृष्ण के पास में जाया करती, परंतु हम तो थक चुकी है और हम जाएंगे नहीं और ना ही मानेंगे। तुम वहां पर जाओ मथुरा में, वहां जाकर के मथुरा की जो नागरिया है उनके पास में कृष्ण की बात सुनाया करना, वे तुम्हें बहुत पुरस्कार दिया करें। तुम्हारे प्रभु जी की ये करतूत है जिन्होंने आज हमें ऐसे बनाया, कहां राज दुलारी थी घर में राजमहल में रहा करती थी, आज तुम्हारे प्रभु ने हमें घर से निकाल के मन की भिखारिणी बना दी, आज अपने पास में मुट्ठी भर चना भी नहीं और कुछ देने लायक कोई भी चीज नहीं जो हम तुम्हें देंगे, इसलिए तुम वहां जाओ यहां तो कुछ नहीं मिलेगा। इस प्रकार विकल हो करके राधा जी अपने अंतर्भाव में डूबी हुई कहने लगी, फिर बार बार ऐसी कहती जा रही थी, मृगयूर इव कपिंद्रम विभदे लुप्त धर्मा स्त्रिया अस्तुत विरूपाम स्त्रीजीत काम जान। हे मधु उनकी बात और क्या सुनाओगे, मत सुना, एक जन्म की बात नहीं ये जन्म जन्म की बात है, हमारे श्याम सुंदर का तो कोई दोष नहीं, दोष है तो उस काले का दोष है, श्याम वर्ण का दोष है कि जन्म जन्म के ठग बन करके आए, जब राम अवतार में आए नव दुर्वाद और श्याम बनकर उस समय वन में गए, सुग्रीव से मित्रता कर ली और उसके कहने से पेड़ के आड़ में से छिप कर वानर राज बाली को मार दिया। क्या कोई वानर को मारता है, बंदर को कोई नहीं मारता, फिर भी आड़े छिप कर उसे मारता, ये क्षत्रिय स्वभाव के कारण किए। और जब वन में गए तो अकेले जाना चाहिए, एक पत्नी को हाथ पकड़ करके ले जाने की क्या आवश्यकता, सिर पर रखा सुंदरी वेश बना करके उनके सामने आई, उसे यदि ग्रहण नहीं करना था तो नहीं करते, मना कर देते, परंतु बार बार उसे छलते हुए लक्ष्मण ने उसका नाक कान काट दिया, तो जिससे कि और कोई ग्रहण नहीं कर सके, क्या ऐसे करना चाहिए। परंतु श्री राम ने तो उसे अपना लिया, सिर्फ लिखा अंतर हृदय से अपना और बांध से नाक कान काट करके राक्षसी को विरूप कर दिया। इधर राधा की कहती थी कि इस प्रकार राम अवतार ने किया, उसके बाद दूसरे अवतार में भी देखा जाए, जबकि सरल सीधे साधे ब्राह्मण होकर के आए बामन अवतार में, बलि महाराज जी के दरबार में गए, उनको बहुत वचनों के द्वारा छल लिया, मोहित कर दिया। बोले हम निर्लोभी ब्राह्मण हैं, हमें अधिक कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके राज्य में हम बैठकर तपस्या कर सके, इसलिए केवल 3 पद भूमि चाहिए, इतना ही मांग लिया। और मांग करके संकल्प करा करके ऐसे विराट रूप प्रकट कर लिया जिससे कि सारा ब्रह्मांड नाप लिया, उसके सिर पर पैर धर करके सारा राज्य पास छीन लिया और उसे नाग पास में बांध कर। क्या ऐसे करना चाहिए? ऐसे ही सारा छल लिया, ठग लिया। बलि महाराज जी की क्षति बावन देव ने तो अंगीकार किया और उनके भक्ति में बन गए, उनके बस तो। राधा जी कहती है ऐसे बावन अवतार में भी ठग लिया क्योंकि श्याम बन गए, और इस अवतार में इस समय जो श्याम सुंदर श्री कृष्ण है श्याम वर्ण में आए हैं, हमारे कृष्ण का तो कोई दोष नहीं है, पर ये श्याम रंग का दोष है जो हमेशा कहते हैं। इसलिए क्या कहूं? उद्धव जी कहती है कि कहता है कि हे स्वामिनी जी, जब बार बार ऐसे ठगते हैं उनका नाम लेने से क्या था, छोड़ दीजिए, बोलिए मत। राधा जी कहती है दुष्टजस तत्कथार्था, उनकी कथाएं छोड़ नहीं पाती हूं, कृष्ण ने छोड़ दिया पर उनकी कथाएं छोड़ी नहीं, इसलिए वही नाम घूम घूम करके उनकी कथाएं बार बार हृदय में आ जाती हैं, इसी कारण जी रही हूं, नहीं तो कभी प्राण छोड़ करके हम चले जाते। जदनुचरित लीला कर्ण पीर्ष विप्रु शत्रुदन विधौत दंड धर्म विनष्ट। यदि कोई व्यक्ति एक बार कृष्ण नाम सुन ले और हृदय में प्रवेश कर जाए, उसका घर संसार पुत्र परिवार बंधु बांधव आत्मीय सजन सबके प्रति सौहार्द मित्रता ये सब समाप्त हो जाता, वो बेचारा रोने लगता है, दिवारात्र पागल होकर के रोता है, और उस रोते हुए व्यक्ति को सभी बंधुजन देखते हैं कि अरे ये बेचारा रो रहा है तो इसके साथ में क्या होगा, इससे कोई काम नहीं होने का, इसलिए सजना दुख दुखी तब ये दुखी व्यक्ति है, इसके साथ में क्या मित्रता करें, सब छोड़ दे। और वो भी बेचारा रोता हुआ उस वृंदावन को जाता है जहां हम रो रही, ऐसे ही कृष्ण का नाम शब्द रुलाता है जैसे हम रो रहे हैं। इस प्रकार राधा जी बार बार अपने विषय को वर्णन करने लगे। उस समय जैसे घोड़ा कुछ उड़ करके कुछ दूर जाता है फिर आता है, तो राधा जी कहती है भ्रमर तुम हमें बार बार मनाने का प्रयास करते हो, तुम क्या चाहते, क्या मैं मथुरा में जाऊं? यह तो संभव नहीं, मथुरा में जाना कदापि संभव नहीं, श्री वधु साकम वास्ते वहां लक्ष्मी जी जो कि कृष्ण के हृदय में सागर रेखा बन करके हैं, जब कोई नहीं रहती है उस समय वो वधु बन करके बाएं तरफ जाकर के बैठी रहती है, तो मैं जाकर के क्या करूं? मथुरा और ब्रजभूमि वृंदावन की सीमाना में केवल एक लाइन ही तो है, बीच में सीमा को प्रदर्शित करती है, परंतु राधा जी के हृदय से मथुरा कितना दूर, हजारों मील लाखों मील की दूर, क्यों? वृंदावन ब्रजभूमि भाव की भूमि है, प्रेम की माधव्य की भूमि, उस ऐश्वर्य की भूमि में वहां वो भाव है, इसलिए राधा जी कहते हैं मैं तो वहां नहीं जा सकती, तब हमें क्यों मनाते हो, बार बार क्यों मना रहे थे? तो भ्रमर चला जाता है कुछ, फिर से उड़ करके आता है, जब उड़ के आया तो उस समय राधा जी पूछने लगी, अरे भ्रमर एक बात बताओ, क्या आर्यपुत्र मधुपुरी में है या कहीं दूर निकल गए? यदि दूर निकल गए हो तो कभी लौटने की कोई संभावना नहीं दिखती, यदि मथुरापुरी में है तो हो सकता है कि कभी लौट के आए। क्या वे कभी ब्रजजनों का स्मरण करते हैं? अपनी गायों के लिए, बछड़ों के लिए कभी उनको स्मरण होता है? अपने हाथ के लगाए हुए पेड़ पौधों के लिए कभी स्मरण होता है? क्या उनके पिता माता को कभी वे स्मरण करते हैं? कभी किसी भी प्रकार से या उल्टी तरह से कभी हम लोगों का नाम लेते हैं, वर्णन करते हैं? जबकि वे लोग सेवा करती हैं। उस समय बोले कि ब्रज की गोपियां इतनी परिपाटी नहीं जानती, इतनी कलाएं नहीं जानती, कहने को तो प्रयास करती थी। इस तरह से कभी हम लोग का नाम लेते हैं, या कभी सारे संसार में भ्रमण करते भी अभी गोपियों की जैसी कोई सेवा करने वाली नहीं है, गोपियों की जैसे कोई प्यार करने वाले नहीं मिली, तब सबको छोड़कर फिर से ब्रज में लौट के आएंगे। और अगर उन सुगंधित भुजा जल हमारे मस्तक पर धारण करेंगे, क्या कभी ऐसा सौभाग्य ऐसा दिन आएगा? ऐसा कहती हूं बिना में अभी भी राधा जी मूर्छित हो, ऐसी मूर्छा दशा देख करके समस्त ब्रज गोपियां रोने लग गई। कहने लगी, उद्धव देखते हो, आप देख रहे हो ना, कोई कृष्ण का संदेश लेकर के आए तो क्यों नहीं बताते, कुछ तो बोलो सही। अब क्या दशा थी उस समय भी रहने अभी होकर सब होती। उद्धव जी क्या कहेंगे, उनके पास कोई शब्द नहीं, और कृष्ण का संदेश जो कुछ लाए हैं उससे भी कोई सांत्वना नहीं होगी। इसलिए वे गोपियों के उस भाव प्रेम की चमत्कारिता देखकर वे प्रार्थना करने लगे, रोने लगे, हाथ जोड़ने लगे, निरहेना में महाभागा महान अनुग्रह कृष्ण, हे महाभाग्यवती ब्रज गोपियों, आपके इस तिरह विप्रलंब भाव में जो आपने दिखाया, आज मेरा जीवन सौभाग्य हुआ है कि आज मेरा जीवन सार्थक हुआ है। उसने हमें भेजा, आपके इन भावों को हमने देखा। इस प्रकार उद्धव जी कहने लगे, उस समय कृष्ण का कुछ संदेश सुनाया, परंतु उससे सांत्वना नहीं हो सकती। जैसे कृष्ण ने कहा, ये गोपियों तुम्हारा हमारा विरह ये केवल ऊपर का है, मन से, हृदय से, आत्मा से हम दोनों एक जगह जुड़े हुए हैं, कोई विच्छेद नहीं, विरह नहीं, केवल जो कुछ दिखता है शरीर से ऊपर से भी। और जल्दी ही हम उड़ के तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुम्हारे मन में, प्राण में, हृदय में रहकर तुम्हें आनंदित करता हूं, तुम्हें से स्वप्न मानती हूं, झूठ मानती हूं, कल्पना मानती हूं, वास्तव में यह सच है। परंतु गोपियां कहां मानती, गोपियां कहती है, उद्धव ये ज्ञान रूपी संदेश लेकर के तुम क्यों आए हो, ये तो नीम रस है, इसको तुम अपने बर्तनों में भर करके रख लो और मथुरा में ले जाओ, वहां जाकर के किसी को पिलाना, किसी को देना, हमें जरूरत नहीं। सैकड़ों जन्म तक कृष्ण के विरह में हम रोती रहे, उनके विरह में हम जलती रहे, वह सही, पर हमें ऐसा ज्ञान का संदेश नहीं चाहिए। उस समय गोपियां विरह में फिर से रोती हुई कृष्ण के उन लीलाओं का वर्णन करती हुई मथुरा की ओर देखती हुई रोने लगी, कहने लगी, हे रमाना, हे भजनाथार्थी नाशन, हे राधानाथ, ब्रजजनों के आरती का सर ये ब्रज भूमि तुम्हारे विरह समुद्र में डूब चुकी है और तुम आकर के इसको बचाओ तब बचेगा अन्यथा कोई उपाय। इस प्रकार कृष्ण के विरह में अधीर होकर रोती रही। उस समय उद्धव जी उन ब्रज गोपियों के चरण की वंदना करने लगे और उनके चरणों में प्रार्थना करने लगे।
बोलो।
उस समय उद्धव जी प्रार्थना करने लगे, एता परम तनु भृत भूमि गोपबद्ध गोविंद एव निखिला मनिरूढ भाव वंशम तिजद भव धियो मुनयोपयम् च किं ब्रह्म जन्म भी अनंत कथारसस। उस समय उद्धव जी प्रार्थना करने लगे, अहो संसार में जन्म सार्थक है तो एकमात्र ब्रज गोपियों का है। कृष्ण के चरणों में कितना भाव है, प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव महाभाव जो जगत में और कहीं संभव नहीं। निखिल आत्मा गोविंद तो सबके हृदय में है, परंतु भी कितने लोग समझते हैं जानते हैं। कोई जानने वाले जाने भी साधारण रूप से भक्ति भी कर ले, पर ऐसा भाव कहां संभव एकमात्र ब्रज गोपियों में। यह किसी तपस्या के द्वारा किसी साधना के द्वारा किसी भी उपाय से यह भाव संभव नहीं। ये ब्रज गोपियां उस भाव की मूर्ति है, भाव के स्वरूप है, उनमें यह भाव संभव है। हम सभी प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा शिवादी देवता गण और जितने भी ऋषि मुनि हैं, वे सभी चाहते हैं उस भाव का एक कण हमें प्राप्त हो जाए, परंतु संभव नहीं। कि ब्रह्म जन्म भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का अभिमान, उच्च कुल में जन्म लेने का अभिमान लेकर के क्या लाभ, और ब्रह्मा जी के जैसे अनंत काल तक कल्प कल्पांतर सैकड़ों वर्ष तक दीपार्ध काल तक जीवित रह करके भी क्या लाभ होगा यदि कृष्ण के चरणों में अनुराग नहीं। इस प्रकार कोई गोपियों का गोपियों की कथाओं को सुनते हैं जैसे औषधियां हैं, न जान के भी औषधि ग्रहण करे खाए तो उसकी क्रिया हो जाती है। ऐसे ही कोई नहीं समझते हैं कि ये गोपियां कौन है क्या है, उनकी कथाओं को सुनने से हृदय के सारा अनर्थ सारा मैल दूर हो जाता है और वो भाव काम आता है। परंतु उद्धव जी कहने लगे, केवा स्त्रियों पर तरी गहिटान दुष्ट कहा ये वृंदावन विलासिनी प्रज गोपियां कृष्ण भाव में उन्मादिनी प्रेम पागली कहा हम विषय वासना दूषित हृदय वाले जहां कामना वासना भर हो ऐसे व्यभिचार दुष्टा व्यम हम सभी इस प्रकार विषय वासना से दूषित हृदय वाले यदि हम ब्रज गोपियों की चरण धी का आश्रय करें उनकी कथाओं को श्रवण करें तो कहीं भाव के काम मिल जाए। जो किसी साधना के द्वारा संभव नहीं उनके कृपा से ही संभव है। इसलिए उद्धव जी कहते हैं, आशा मोह चरण रेयु जुषा महम स्या वृंदावन किमपि गुल्म लतौषधिना। उस ब्रज वृंदावन में कहीं तेरा गुरु बोलता हो करके हमारा जन्म हो जाए। और गोपियां जब भाव में डूब करके चलती हैं, उनके चरण धूलि हमारे मस्तक पर गिर जाए तो हमारा जन्म सार्थक होगा। इस प्रकार उद्धव जी प्रार्थना करते हैं, नारायण श्री अंग जऊ नितांत रति प्रसाद। जिस रास रस में रासलीला श्री कृष्ण ने जिनके साथ रास रचाया और उस रास मंडली में लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं कर सकी और जितनी देवियां हैं देवी प्रवेश नहीं कर पाई, कमल की जैसी सुगंधी वाली ऐसे स्त्रियों तक प्रवेश नहीं कर सकी, वहां पर एकमात्र ब्रज गोपियों को स्थान मिला जिनके माधुरी जमाय भाव प्रेम को आस्वादन कहने के लिए कृष्ण ने रास रचाया। और उस रास में भी कहीं गोपियां मान करके रूठ करके न चली जाए इसलिए उन्हें मनाने के लिए उनके गले में हाथ डाल करके उनसे प्रार्थना करते हैं, जो पर ब्रह्म परमेश्वर स्वयं भगवान परापर तत्व है, अंत ऐश्वर्य माधुर्य के जो अधिपति हैं, वे गोपियों से अनुग्रह की प्रार्थना करते हैं। हे गोपियों, तुम लोग अनुग्रह कर ये लीला संपूर्ण रखो। ऐसी रसलीला से श्री कृष्ण जहां गोपियों के साथ में प्रेम रस का भाव रस का आस्वादन किया, ऐसी ब्रज गोपियों की चरण में हम प्रार्थना करते हैं। तो बंदे नंद ब्रज स्त्री राम पाद रेणु मवीष, इस प्रकार ब्रज गोपियों की चरण रेणु की वे निरंतर प्रार्थना करते रहे, वंदना करते रहे। आज भी उद्धव ब्रज में घास बन करके ब्रज गोपियों की चरणभूमि की लालसा में बैठे थे। इस प्रकार जासाम हरि कठोत गीतम पुनापि भुवन प्रेम, जिनकी पवित्र हरि कथा जिनके पवित्र गीत समस्त संसार को पावन करती है, ऐसे ब्रज गोपियों की कथाओं को हम पुनः पुनः नमन करते हैं, उनके चरणों में हम पुनः पुनः नमन करते हैं। उनकी इन भावों का भागवत में वर्णन किया कि कोई भी सौभाग्यवान व्यक्ति गुरु चरण का आश्रय कर भजन करते हुए उनकी कथाओं को सुनते हुए भाव के कण को प्राप्त कर ले, इसी से जन्म सार्थक होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत का यही अभिप्राय है। अभी हम लोग गुरु जी के मुखारविंद से उनके उपसंहार कथाओं को श्रवण करेंगे, इसलिए मैं आज अपना वक्तव्य यहीं पर रखता हूँ। फिर से हम लोग आप लोगों के दर्शन के प्रयासी हैं, तो इस प्रकार सबकी उपस्थिति और गुरु चरण कमल की आश्रय का सौभाग्य प्राप्त हो, इन्हीं प्रार्थना के साथ मैं अपना वक्तव्य यही रखता हूँ।
अभी अभी आप लोगों ने कृष्ण के विरह में डूबी हुई गोपियों की बात सुनी। जब उद्धव जी ब्रज में गए और गोपियों से मिले तो गोपियों ने पहले ये प्रश्न किया, उद्धव प्रेम एक स्वार्थ होता है और एक निस्वार्थ प्रेम होता है। भिक्षुक जाता है किसी के दरवाजे पर, राधे राधे कहता है, भिक्षा मिल गई, एक मिनट फिर नहीं रहेगा। कोई हिरण जंगल में रहता है, जंगल में आग लग गई तो फिर वो जल गया, फिर वहां पर कभी नहीं आता। पक्षी वृक्ष में तब तक रहते हैं जब तक कि फल और फूल रहे। एक वेश्या मनुष्य को तब तक खूब आदर करेगी जब तक कि पैसा मिलता है, पैसा खत्म हो जाएगा फिर उसे अपने दरवाजे पर नहीं आने देगी। कामी पुरुष स्त्रियों से काम प्राप्त हो जाने के बाद में फिर उसको छोड़ देता है, ये तो स्वार्थ का प्रेम है। भौरा पुष्प पर जाता है, मधु ले लिया, फिर लौट करके नहीं आएगा। छात्र स्कूल में जाता है, स्कूल परीक्षा पास कर ली, फिर कभी मास्टर को गुरु नहीं कहने, प्यार नहीं, प्रेम नहीं करता, उसका आदर ही नहीं करता, स्मरण ही नहीं करता है। उद्धव तुम बतला सकते हो कि हमारा प्रेम तो ऐसा नहीं था, हमने तो निस्वार्थ भाव से कृष्ण की सेवा की, और कृष्ण का प्रेम भी निस्वार्थ था, हमसे उनका कोई भी स्वार्थ नहीं था, तो बतलाओ तो ये प्रेम कैसे टूट गया। उद्धव जी सिर खुजलाने लगे, कोई उत्तर नहीं दे सके, इसलिए गोपियों की पाठशाला में, विद्यालय में वो भर्ती नहीं हो सके। स्कूल को देखा, प्रोफेसर टीचरों को देखा, राधा जी प्रिंसिपल को देखा, ललिता विशाखा का जिसका इन्होंने वर्णन किया, उनकी विरहावस्था को देखा, और अपने को कृतार्थ मानने लगे, ओह गोपियों का ऐसा विरह, उन्होंने हमारे ऊपर में महान अनुग्रह किया, मैं तो समझता नहीं था। मैंने समझा जी कृष्ण को छोड़कर के मथुरा से यहां से कैसे आऊं, किंतु हम तो देख रहे हैं कि कृष्ण पूरी तरह से मथुरा वृंदावन में ही है, ब्रज में गोपियों के पास में है, मथुरा में तो वो एक अंश मात्र से है। फिर गोपियों की तरह तरह से स्तुति वंदना किया जिसका इन्होंने वर्णन किया। इसके बाद में कृष्ण और बलदेव द्वारका में गए, बलदेव जी का रेवती से विवाह हुआ, और रेवती और कौन, बारुणी से विवाह हुआ। कृष्ण ने फिर तरह तरह के स्वयंवरों में रुक्मिणी जी से, सत्यभामा से, मित्रविंदा से, कालिंदी से, और सब आठ पटरानियों से शादी की, और इसके बाद में नरकासुर की जेलों में बंद 16,000 राजाओं की कन्याएं सुंदरी और उनकी पत्नियां थीं, बड़ी सुंदर, उनको जेल में बंद कर दिया था, ये किसी दिन विवाह करूंगा, किंतु भाग्यवश नहीं किया। नारद जी के मुख से सुन करके कृष्ण गए, सत्यभामा के साथ गरुड़ पर चढ़ करके नरकासुर का वध किया और जेलखाना खोल दिया। वो समस्त रानियां और राजकन्याएं कृष्ण के पास में आकर के प्रणाम किया। कृष्ण ने कहा तुम अपने घरों का पता बतलाओ, पति का ठिकाना बतलाओ, तुमको वहां पर पहुंचा देंगे। उन लोगों ने कहा अब हम उनके पास में लौट करके नहीं जाएंगे, अब हमें ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग एक वर्षों तक इनके जेल खाने में हैं, वो कैसे ग्रहण करेंगे, अब तो हम आपकी दासियों की दासी बन करके सेवा करना चाहती हैं। कृष्ण ने कहा अच्छी बात है, सबको गरुड़ पर बैठा करके ले गए द्वारकापुरी में, और सबसे अलग अलग महलों में अलग अलग तरीके से तरह से कृष्ण ने 16,000 रूप धारण करके सबसे राजकीय विवाह किया, दासी नहीं बनाया, कृष्ण ऐसे दयालु हैं। रामचंद्र से कोई प्रार्थना करे मैं आपकी अर्धांगनी पत्नी होनी चाहता हूं, कैसे इस लीला में नहीं, आना कृष्ण लीला में दंडकारण्य के 60,000 ऋषियों ने कृष्ण राम से ऐसे ही प्रार्थना की, ओ तुम वहां आना। जनकपुर की राजकन्याओं ने राम को देख करके सीता जी के साथ में ब्याह हुआ, इन्होंने कहा जी हमारे पति भी राम हो, उन्होंने कहा इस लीला में नहीं, कृष्ण लीला में आना। कृष्ण ऐसे परम उदार हैं, कुब्जा तक को भी ग्रहण कर लिया, और की तो बात क्या। इस तरह से कृष्ण ने इनको ग्रहण कर लिया, और इसके बाद में महाभारत के युद्ध में दोनों पक्ष के समस्त जितने वीर थे सब लोगों को समाप्त किया, केवल थोड़े से ही पांडवों की तरफ में 5 और एक बच गए कृष्ण 6, और उधर में भी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कुछ बच गए। बाकी सबको ध्वंस किया। फिर आए द्वारका का भी सब अपने परिवार को भी प्राय समाप्त कर दिया और धाम में जाने के लिए बैठे थे। उस समय में उद्धव जी उनको खोजते हुए उनके पास में आए, बोले जे प्रभु अब मैं समझ रहा हूं कि आप अपने धाम में चले जाएंगे, कृपा करके हमको मत छोड़िए, हमको भी साथ ले जाइए। उन्होंने उद्धव तुमको रहना पड़ेगा, तुम रहो, हमारी लीला कथाओं को जगत में प्रचार करना, नहीं तो जगत सुनी हो जाएगी। उद्धव को समझाया, उद्धव जी ने कुछ प्रश्न किए और इन्होंने उत्तर दिए। उस समय में एक समय नारद जी आए द्वारका में, वसुदेव जी ने पूछा, हमने तो कृष्ण को पुत्र समझा और मैंने अपनी मुक्ति के लिए कुछ भी नहीं किया, आप कृपा करके हमको बतलाइए कि मुक्ति कैसे मिलेगी संसार से। मन ही मन में नारद जरा हंसने लगे, बोले जिसका पुत्र कृष्ण है उसको मुक्ति की जरूरत? फिर भी कहने लगे कि नौ जोगेंद्र थे, कभी राजा जनक के पास में नेमी के पास में गए। राजा नेमी ने पूछा माया क्या है, किसको कहते हैं? आप लोग सुनिए, अच्छी तरह से सुनिए, माया क्या है? कृष्ण ने वो नौ जोगेंद्रों में से एक ने कहा, जिसे भगवान की शक्ति दो है, एक पराशक्ति है एक अपराशक्ति है। पराशक्ति भगवान की जितनी भी लीलाएं होती हैं, भगवान की भगवत्ता भुला कर और परिकरों की भी को मोहित कर करके कृष्ण की लीलाएं कराती हैं, आस्वादन कराती हैं, वो तो पराशक्ति हैं। और उन्हीं की छाया माया शक्ति है जो जगत की सृष्टि करती है। और सबसे अधिक बात, हम लोग शरीर नहीं है, ये तो हार्ड मांस रक्त पेशाब पैखाना की थैली है। तो अभी इस शरीर में मैं और शरीर से संबंधित व्यक्ति में ये मेरा है मेरी है, मैं और मेरापन का यह आरोप करा देती है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरे लड़के हैं, ये हमारे पति हैं, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा बाग बगीचा है, ये मेरा कुत्ता है, ये मेरी गाय है। वो वही माया है, यही माया है। और भगवान को भूल करके भगवान का सेवक होते हुए भी जीव अनंत काल से भ्रमण कर रहा है इस संसार में और सुख दुखों को भोगता है, यही माया है। इस माया से पार पाना बड़ा भारी कठिन है। फिर राजा ने पूछा, इस माया से कैसे तर सकते हैं? तो उन्होंने कहा, जिस प्रकार से वो भगवान को भूल करके आया है, फिर उसी भगवान का स्मरण करने से ही हम माया से पार कर सकते हैं। इसके लिए प्रथम सदगुरु के पास में जाओ, उनके चरणाश्रित हो, अपना जितना लाभ है सब कुछ उनको अर्पण करो, उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करो, तब उनकी उनको भगवान का प्रकाश जान करके और उनकी सेवा करने से तुमको रास्ता बतलाएंगे और तब तुम उसी के बतलाए हुए रास्ते से साधनों से भगवान की सेवा कर सकते हो। बिना गुरु के तुम भव सागर से नहीं पार कर सकते, कृष्ण की भी कृपा, किंतु गुरु भी ऐसा तैसा नहीं हो, सर्वशास्त्र विशारद हो, जानने वाला, शिष्य की सारी शंकाओं को मिटा देने वाला हो और संसार से परम विरक्त हो, कृष्ण की अनुभूति हो, ऐसा गुरु ही हमारा कल्याण कर सकता है। जैसा तैसा जो गुरु संसार में डूबा है ठीक है, जो और सब कामनाओं में डूबा है वो क्या संसार का कल्याण कर सकता है। इसके बाद में कृष्ण ने उनको कहा, देखो एक बात कहते हैं, पुरंजय नाम का एक महाराजा था, सारा विश्व ब्रह्मांड में उसका राज्य था, बड़ा प्रतापी राजा था। उसकी स्त्री भी बड़ी सुंदरी, परम गुणवती रूपवती, बच्चे भी हैं। एक दिन जंगल में गया और एक परम सुंदरी अप्सरा को देखा, उर्वशी को, पुरुरवा उसका नाम था, तो जंगल में उस उर्वशी को देखा और उसका रूप देखते ही मुग्ध हो गया। बोला जे देवी आप कौन हैं, किस लिए यहाँ पर आई हैं, क्या ढूंढ रही हैं? तो उसने कहा हे महाराज मैं स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी हूँ, मैं अपने लिए योग्य पति ढूंढ रही हूँ। आज मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे व्यक्ति हमको मिल गए, मैं आपके साथ में विवाह करके आपके साथ में रहना चाहती हूँ। राजा ने ये कहा जैसे हमारा तो ये परम सौभाग्य होगा, बहुत मैं खुशी हूँ। तब उसने अप्सरा ने कहा हमारी दो प्रतिज्ञा है, शर्त है, हमारे पास में भेड़ के दो मेमने हैं, इसकी आपको रक्षा करनी होगी। राजा ने कहा जो ठीक है करेंगे। दूसरी बात, कभी भी हमारे सामने नंगे होकर के नहीं आएंगे। यदि बच्चों की भेड़ के मेमनों की रक्षा नहीं हुई और नंगे आ गए तो हम छोड़ करके आपको चले जाएंगे। राजा ने ठीक है, हजारों वर्ष तक उस अप्सरा के साथ में रहे और उनका हजारों वर्ष एक सेकंड के जैसा बीत गया, उनको मालूम नहीं कहां गई रात कहां गया दिन, आसक्त हो करके उसके साथ में भोग करते रहे। हजारों वर्षों के बाद में एक दिन इंद्र ने कहा जी हमारी अप्सरा वो मेनका उर्वशी कहां गई, उसको कहीं से जैसे जैसे तैसे लाओ। तो देवताओं के अनुचर गए और भेड़ों को चुराने लगे, जब भेड़ों को ले जाने से वो आ जाएगी, भेड़ के बच्चे को चुराने लगे, तो वो भै भै मैं करने लगे। तो उस अप्सरा ने सुना, उर्वशी ने कहा अरे कापुरुष बड़ा वीर बनता है, हमारे भेड़ के बच्चे को भी रक्षा नहीं कर सकता है, तुमको लज्जा आनी चाहिए, धिक्कार है तुम्हें। राजा को बड़ा ये लगा और झट जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में वहां से धनुष बाण लिया चले। उस समय राजा नंगे थे और जो ही बाहर में चले और भेड़ के बच्चों को छुड़ा करके लाए तो उर्वशी ने कहा जी अब हम तो तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, तुमने अपने शर्तों का उल्लंघन किया है, नंगे हमारे सामने आए। और उर्वशी चले जाने लगी अपने लोग को, तब ये गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे ये देवी एक मिनट के लिए ठहर जाओ, हमारी आशाएं पूर्ण नहीं हुई, एक मिनट के लिए ठहर जाओ। उसने कहा देखो भगवान का भजन करो, इससे तुम सुखी नहीं रह सकोगे। बहुत समझाया माने नहीं, अपने लोग को चली गई, पीछे पीछे ये वहां पर गए। वहां जाने के बाद में करिए हमें धिक्कार है, मैं पृथ्वी का राजा बड़ा परक्रमी और एक अप्सरा ने उर्वशी ने हमें छल लिया ठग लिया, मैं उसके काम में मोहित होकर के दिन रात कहां गया, हजारों वर्ष बीत गए और आज उसको पीछा करते करते उर्वशी लोक में आया हूं, मुझे धिक्कार है, आज ही मैं अपने मन से उर्वशी को निकाल देता हूं। निकाल दिया, फिर लौट करके चले आए और राज्यपाट छोड़ करके भगवान का भजन कर लो। क्या तात्पर्य, भगवान ने जन्म दिया है स्त्री पुरुष का भोग करने के लिए नहीं, पुरुरवा जैसा वैराग्य के लिए, भजन करने के लिए। इसलिए हम लोग संसार में आसक्त स्त्री पुरुष के प्रेम में नहीं होंगे, देख लेना, यदि हुए आसक्त तो गए दोनों जहां से खुदा की कसम, न इधर के रहे न उधर के रहे। इसलिए सावधान संसार कीजिए पांडवों की भांति, और आप लोग संसार कीजिए गोपियों की भांति, और पति लोग स्त्रियों को प्रणाम करके गोपियां जैसा आदर करेंगे, ये संसार है। द्रौपदी का पांडवों का संसार था भक्ति का, ऐसा संसार करो। ये सब कथाएं आप लोगों को हमने सुनाया, इन लोगों ने सुनाया, घर घर जाकर के सुनाया, कुछ तो अपने गांठ में लो। हम लोग चले जाएंगे फिर भूल नहीं जाना, अपने पॉकेट में अच्छी तरह से अपने हृदय रूपी पॉकेट में रख लो। हम लोग के जाने के बाद में भी किसी प्रकार से दुर्बल न हो करके जैसा बतलाया है हरिनाम करना। प्रतिदिन जिनकी दीक्षा हो गई है वो लोग नियमित रूप में संध्या नहीं करेंगे, गुरु का दिया हुआ मंत्र जपेंगे। जिन लोगों ने हरिनाम नहीं लिया है अब अगले साल उनको प्रस्तुत होकर के हरिनाम कीजिए, नहीं तो फिर गधे घोड़े सूकर के रूप में आना पड़ेगा। मछली खो करके आया, बंगाल में जन्म लिया तो ऐसे ही खा जाएंगे पश्चिम देश में भी, ऐसे छुल छाल करके तेल में दे करके खा लेंगे। याद रखो मांस माने ही होता है मांस, मुझे जो खाएगा वो उसको खाएगा। मीट मैंने भी वही होता है, मी ईट, एम ई ए टी, मी जिसको तुमने खाया वो हमको भी खाएगा। खबरदार ये सबसे दूर रहो। यदि कल्याण चाहते हो तो गांजा भांग अफीम सिगरेट धूम्रपान मत करो, और सबसे अधिक गेम न खेलो, गेम माने जुआ मत खेलो, इन सबसे दूर रह करके भगवान का भजन करो। आज यहीं पर हम लोग अपनी कथा का विश्राम देते हैं। याद रखो हम लोगों ने जो जो सुनाया है उसको हृदय में धारण करो। कृष्णदास।